जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बितरे हमारे ध्यान। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान तहा शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिक। छठा ग्रंथ सारी दिगंबर जैन समाज में न केवल स्वीकृत एवं अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। ऐसे लोग तो इस जगत में मिल जाएंगे जो समय सार का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़े, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो छेड़ा ला के उसके चित्त में स्वीकृत ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि दिगंबर जैन समाज की एकता का यदि कोई सबसे बड़ा साधन बन सकता है तो ये छेड़ाला बन सकता है। छेड़ाला की चर्चा देश में कहीं भी किसी भी ग्रुप के पास जाकर करो, कोई भी व्यक्ति उससे असहमत नहीं होगा। शायद आपको ये पता नहीं है कि ये दौलत राम जी ने जो छेड़ाला लिखा है वो दिल्ली निवासी थे। आपने पढ़ा होगा कि उनका जन्म सासनी में हुआ था, हाथरस के पास। मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं कहां का हूं, आप मुझे आप किस नाम से जानते हैं, जयपुर के नाम से कि उस गांव के नाम से? तो दौलत राम जी ने अपने जीवन के अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष इस दिल्ली में बिताए थे, इसलिए उन्हें हम दिल्ली का कहें कि सासनी का जन्म हुआ होगा सासनी में। उनके पिता वगैरह हाथरस में व्यापार करते थे, वे भी उनके साथ हाथरस में कुछ दिन व्यापार में रहे, कुछ दिन मथुरा भी रहे, कई जगह घूमते हैं घूमे, लेकिन उनका समाधि मरण इस दिल्ली में हुआ। और न केवल समाधि मरण हुआ, अनेक वर्षों तक वो इस दिल्ली में रहे अंत समय में, और उन्होंने सम्मेलन सखर जैसी यात्राएं भी की तो इस दिल्ली समाज के साथ ही की। इसलिए मैं दिल्ली वालों को दिल्ली वालों का छेड़ाला सुना रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि दौलत राम जी ने माल अपनाया है जयपुर के महापंडित टोडरमल जी का, और शैली अपनाई है महाकवि बुद्धजन की। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि लख बुद्धजन की भाष, बुद्धजन कवि की भाषा देखकर उनने भी एक छेड़ाला बनाया था इसके पहले। उसे देखकर मुझे एक छेड़ाला बनाने का उत्साह हुआ। यद्यपि उसके पहले एक दैनत राय जी ने भी छेड़ाला बनाया था, लेकिन वो इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन दैनत राय जी के बाद में जो बुद्धजन जी ने बनाया वो कुछ लोकप्रिय हुआ, और अंत में इस दौलत राम जी ने बनाया जो हर आदमी के कंठ का हार बन गया। उनकी शैली माने छह ढालें, ढाल माने बोलते हैं छंद को, अपन गाते हैं ना तो कहते कैसी राग है, ढाल बोलते हैं ना उसे, तो ये छह रागों में है। पहले चौपाई, दूसरा पदरी छंद, फिर जोगी रासा, ऐसे छह छंदों में है, इसलिए इसका नाम छह ढाल है। और दूसरा ढाल उसे बोलते हैं, एक तलवार होती है और एक ढाल होती है। तलवार मारने के काम आती है और ढाल अपनी रक्षा के काम आती है। हम जैन धर्म वाले अहिंसक धर्म वाले हैं ना, मारने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की चिंता तो हर एक को होती ही है ना, इसलिए वो कहते हैं कि हमें ढाल की जरूरत है, तलवार की नहीं। ऐसे भी धर्म इस दुनिया में हैं जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके निकले कि या तो तुम इसे स्वीकार करो नहीं तो तुम्हें तलवार के घाट उतार दिया जाएगा। ये तलवार वाला धर्म नहीं है, ये ढाल वाला धर्म है। और हमें खतरा भी इस जगत के जीवों से नहीं है, हमें खतरा भी अपने ही राग देश मोह मिथ्यात्व इन विकारी भावों से है। तो उन भावों से बचाने के लिए एक ढाल का काम करती है, इसलिए इस किताब का नाम रखा ढाल, छह ढाला। हमने छह ढाले रखी हैं, तलवार एक भी नहीं रखी, क्यों? हमें मारने का काम करना ही नहीं है, समझे ना? हमें कर्मों को भी नहीं मारना है, मारने की बात आई कहां से? हम तो वो जैनी हैं कि जिन लोगों की ये आदत है पहले ही जमाने से कि पाका सा बनाना हो, है ना, ये पा वाला सा होता है ना, षटकोण वाला, अथवा वा का बा बनाना हो तो क्या करें? तो एक छत्री से पूछें तो वो कहेगा पेट चीर दो, चीर दो बीच में, बन जाएगा ना। लेकिन जैनी से कहें तो वो कहेगा पेट भर दो। क्रिया एक ही है लेकिन उसे वो भरना बोलता है, उसे चीरना नहीं बोलता है, उसकी भाषा में ये अहिंसक है, पना है। तो ये छह डाला हमारे विकारों से हमारी रक्षा करने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम रखा छह डाला। और माल टोडामल जी का है, ये क्यों कहता हूँ? इसलिए नहीं कि मैं जयपुर वाला हूँ और टोडामल जी जयपुर के हैं, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की स्टाइल है वो इनने अपनाई। क्या अपनाई? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की स्टाइल। पहले उसमें संसार के दुखों का वर्णन है, उसी पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन है, फिर उसमें दूसरी ढाल, दूसरे आगे चल करके अध्यायों में ये संसार में दुख में जो जीव दुखी है उसका कारण क्या है, तो इसकी भी दूसरी ढाल में दुखी होने का कारण क्या है ये बताया। फिर बताया कि सुखी कैसे हुआ, सुख क्या है, तो फिर उसकी बात करी। धर्म दो प्रकार का होता है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, तो बोले श्रावक धर्म की बात करी, और श्रावक मुनि कैसे बनते हैं कि बारह भावनाओं का भाते हैं तो मुनि बनते हैं। तीर्थंकरों ने भी दीक्षा लेने के पहले बारह भावनाएं भाई थी, तो बारह भावनाओं का वर्णन किया और अंत में मुनि धर्म का वर्णन किया। तो इन्होंने टोडामल जी की जो स्टाइल है वो अपनाई। जो बुद्धजन कवि की स्टाइल थी मालूम उसमें क्या है? पहली ही ढाल में बारह भावनाएं हैं, वो इन्होंने नहीं अपनाई। यद्यपि उसे देखकर इनको छह ढाल में लिखने का भाव आया, समझे ना, और छह छंदों में इन्होंने लिखा, लेकिन उनकी बात सिर्फ इतनी अपनाई, लेकिन उसमें सारा माल टोडामल जी का था। मैं ऐसी पंक्तियां आपको निकाल के बता सकता हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की और छडाला की, जैसे हू बहू उनका पद्यानुवाद कर दिया हो। छडाला को गांधी स्वामी तो छोटा समय सार कहा करते थे, ये छोटा समय सार है, तो सबकी समझ में आ जाए आसानी से, सबको सहज भाव से स्वीकृत हो जाए, ऐसा ही ग्रंथ है। बहुत दिन पहले की बात है कि मैं एक जगह गया था, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं गया तो वो एक संस्था चलाते थे, जिसमें लड़कियां पढ़ती थीं, बहुत बड़ा आश्रम था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप ये लड़कियों की मीटिंग की के साथ इनसे आप कुछ पूछो, इनसे की कुछ परीक्षा करो, किसमें करो इनसे। तो मैंने कहा नहीं, क्या जरूरत है कि नहीं, नहीं आपको पता तो लगे। मैंने कहा आप पढ़ाते हैं इससे ही हमें पता लग गया कि इनको सब कुछ आता होगा, पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया तो मैंने एक प्रश्न किया, बेटा क्या पढ़ते हो? तो छड़ डाला, छेड़ाला पढ़ती हूँ। हाँ, तो छेड़ाला में किसकी कहानी है? जब मैंने ये प्रश्न किया तो वो चारों तरफ एक दूसरे का मुख देखने लगी, अपने अध्यापिकाओं का मुख देखने लगी, सब चुप्पी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हिम्मत वाली लड़की थी, पीछे खड़ी हो गई हाथ उठा के, साहब मेरा बोलो बेटा क्या बात है? कि एक मेरा प्रश्न आपसे है। बोलो बोलो क्या है प्रश्न? बोले आपने छेड़ाला पढ़ी है क्या? मेरा गजब हो गया। क्यों? हम तो परीक्षा लेने चले थे, पर यहां तो परीक्षा देने की नौबत आ गई। मैंने कहा बहन ऐसा तुम क्यों बोलती हो? तो उन्होंने कहा कि छेड़ाला कोई कहानी है, वो तो अध्यात्म का ग्रंथ है, ये कोई प्रथमान योग थोड़ी है कि जिसमें कहानी किस्सा होते हैं, कि राम की कहानी है, कि कृष्ण की कहानी है, कि महावीर की कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी छेड़ाला पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है क्या है, पर हमसे पूछना शुरू कर दिया कहानी किसकी है। मैंने कहा तुम ठीक कहती हो, मैंने शुरू के दो तीन छंद पढ़े थे, इसलिए ऐसा भ्रम हो गया है। उसमें ये लिखा था, आपकी किताब में लिखा होगा, देखना, तास भ्रमण की है बहु कथा, ते कछु कहूं कही मुनि यथा, लिखिए ना, ऐसा उसमें लिखा था। तो मैंने समझा कि जब वो प्रतिज्ञा कर रहे कि मैं थोड़ी बहुत कहता हूं, तास भ्रमण की है बहु कथा, कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं पूरी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत कहता हूं, जैसी कि मुनिराजों ने कही है, कही मुनि यथा, हमारे आचार्य भगवानों ने कही है। तो मैंने कहा उन्होंने प्रतिज्ञा की तो कहानी भी कही होगी, मैंने आगे नहीं पढ़ा। अब मैं क्या करूं यदि कभी ही धोखा दे जाए तो? मैं प्रतिज्ञा की ना कि तास भ्रमण की है बहु कथा और पे कछु कहूं कही मुनि यथा, बोला है ना प्रतिज्ञा इसमें। तो ये किसकी कहानी है छेड़ाला में? जीव की, हमारी, तुम्हारी, सब की, बहनों की, भाइयों की, इस जगत में जितने जीव हैं सबकी एक कहानी है। और कहां से शुरू होती है ये कहानी और कहां खत्म होती है ये कहानी? काले अनंत निगोद मझार बीत्यो एक इंद्रिय तनधार, कहां से शुरू होती है? अनादिकाल से, अनंत काल बीत गया तब ये हेडक्वार्टर में निगोद में रहता था, वहां से कहानी शुरू होती है और खत्म कहां होती है? रही है अनंतानंत काल तथा यथा शिव परिणय। क्या वो अनंत काल तक वे मोक्ष में चले गए ना, तो अनंत सुखी हो गए, और कब तक रहेंगे वहां? देखो तो निगोद से शुरू हुई और मोक्ष में जाके खत्म होनी। ऐसी कहानी है। और जब तक हम मोक्ष में नहीं गए तो समझ लेना कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बीच में ही चल रही है। शुद्धों की तो खत्म हो गई ना, कहां खत्म हो गई, रही है अनंत, अनंत काल तक चलती रहेगी। एक राजा था, तो उस राजा की ये आदत थी कि जो भी फरियादी उसके यहां आता था तो वो कहता, साहब मेरे को उसने पीट दिया। तो कहा फिर क्या हुआ, वो ऐसा पूछता था बार बार। और जो कहता साहब फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना तो जाओ। और नहीं जाता फिर क्या हुआ, 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 पूछते ही रहता था। आखिरकार अंत में कहना तो पड़ा ना कि फिर कुछ नहीं हुआ। एक आदमी उनके पास गया और उसने कहा, साहब मैंने खेती की और बहुत गेहूं बोए, कि फिर क्या हुआ, कि इतनी अच्छी बरसात हुई कि फिर क्या हुआ, इतने अधिक गेहूं बोए कि मैं उन्हें समेट नहीं सका, फिर क्या हुआ, कि मैंने बोरों में भरकर एक बहुत बड़ा बेयर हाउस लेकर और उसमें वे सारे गेहूं स्टोर कर दिए, कि फिर क्या हुआ, कि एक चिड़िया आती थी और उसमें से जाती थी एक गेहूं का दाना लेकर के और फुर करके उड़ जाती, कि फिर क्या हुआ, कि चिड़िया आई उसने दाना लिया और फुर करके उड़ गई, कि फिर क्या हुआ, कि चिड़िया आई। तो तेरी ये फुरफुरबाजी कभी खत्म होगी क्या, नहीं ऐसा, गेहूं तो बहुत पैदा हुआ था ना, चिड़िया तो एक दाना लेके जाती थी। तो सारा जब स्टोर खाली हो तब तो कहानी खत्म हो ना। कि जब आपकी ये फिरफिरबाजी खत्म होगी ना, तब मेरी ये फुरफुरबाजी खत्म होगी। क्यों, कब कहानी खत्म हो, शुद्ध में जाके खत्म थोड़ी हुई क्या, ये तो अनंत काल तक रहेगा ना हुआ। तो ये ऐसी कहानी है कि जो कभी खत्म नहीं होती। आप जानते हैं ना सिद्धांत, हम बोलते हैं ना सिद्धांत शास्त्र, हमारा ये सिद्धांत है। आप जानते हैं सिद्धांत का क्या अर्थ है, नहीं? कि जो बात जिसका अंत जाकर सिद्ध दशा में हो उसका नाम है सिद्धांत। कि बीच में ही अंत हो जाएगा, यहां से मर के स्वर्ग चले गए खत्म, नहीं, अंत कहां हुआ, अंत सिद्ध दशा में होना चाहिए तो उसका नाम सिद्धांत। तो छेदाला असली सिद्धांत शास्त्र है, क्योंकि इसका अंत सिद्ध में जाकर हुआ। देखो अपने जितने भी पुराण हैं उनमें जो कहानियां हैं, पचासों भव की कहानियां हैं ना उसमें, लेकिन वो कहानी खत्म कब होती है, फिर मर के स्वर्ग चले गए, फिर नरक चले गए, फिर मनुष्य हो गए, फिर प्रिंस हो गए, मामला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्यों, जिस सिनेमा में जाते हो तो कहानी का अंत कहां होता है। अरे हिंदुस्तान के सिनेमा की एक स्टाइल है, मैं आपको दो मिनट में बता दूं, सारे सिनेमाओं जाकर के आप समझ लेना कहीं जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। कहानी शुरू कहां से होगी, दो लड़कियां और एक लड़का, अथवा एक लड़की और दो लड़के, और धमाधम 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 धमाधम, फिर एक खत्म हो गया और एक दो की आपस में शादी हो गई, हाथ में हाथ मिलाया और कहानी खत्म। बस तो और हो तो बता देना, देख लेना जाके जितनी भी फिल्में तुमने आज तक देखी हो उसमें से हिसाब किताब लगा के देख लेना। क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान का ये नियम है नाट्य शास्त्र का कि कोई भी कहानी सुखांत होना चाहिए, दुखांत नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेजेडी आई है ना दुखांत कहानियां, ये तो विदेश से आई है। शेक्सपियर ने सबसे पहले दुखांत नाटक लिखे तो उनकी नकल पर हिंदुस्तान में लिखे जाने लगे। लेकिन भरत मुनि हुए 2000 वर्ष पहले, उन्होंने नियम लिखा महाकाव्य का, नाटक का, तो लिखा कि हर कहानी का अंत सुख में होना चाहिए, तो ही वो कहानी है, भारत में तो कहानी नहीं है। तो नरक चला गया और कहानी खत्म। तो हमने काय के लिए कहानी सुनी है? नरक जाने वाले के लिए कहानी सुनी हमने। तो जैन धर्म में जब तक कहानी को खत्म ही नहीं करते हैं, जब तक मोक्ष न चला जाए। नरक गया, सुरक गया, यहाँ गया, इस बंधन गया, होते 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 जो हमारा मेन नायक है ना, तब आदिनाथ हो चाहे पारसनाथ हो चाहे महावीर हो, उनके 25वां भक्त सुनाए जाएंगे, लेकिन अंत में मोक्ष में पहुंचाएंगे और पुराण खत्म। इसलिए वो सिद्धांत है ना। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय नियम के अनुसार यदि हर कहानी को सुखांत होना चाहिए, हमें नियम मान लें कि हर कहानी को सुखांत होना चाहिए, तो वो जो कहानी है तुम्हारी सिनेमा की तो और जेने तल लोगों के द्वारा लिखी हुई, वे सुखांत कहाँ है? वो तो भोगांत है। क्यों? वो लड़का लड़की की शादी हो गई तो अब बस सुखी हो गए बेटा, सुख तो शुरू हुआ है, दुख का अभी दुख का स्टार्टिंग शुरू हुआ है, ये सुखांत नहीं है। क्यों? और आप सब अनुभवी लोग बैठे हो यहाँ, आप समझ लो सुख शुरू हुआ है, हैं? कहानी का अंत हुआ है कि कहानी की स्टार्टिंग हुई है? ये तो भोगांत है, ये सुखांत कहाँ है? सुख दो प्रकार का है ना, तो ये अपने ये छैराला की पहली ढाल है, इसमें यही तो बताया कि चारों गतियों में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। चारों गतियों के दुखों का वर्णन है ना, अभी आपने पढ़ा है, आप वैसे भी सबको याद होगा। क्यों भाई, मैं आपको सुनाऊं तो उसमें क्या मजा है? ये तो आपने चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है, ये छैराला कहता है। तो वो जो दोनों की शादी होगी वह कोई गति नहीं रही, वो तो कहते हैं चार गतियों के अलावा जो पंचम गति माने मोक्ष है उसमें पहुंच जाए तो ही सुखांत है, अन्यथा वो दुखांत ही है। जब चारों गतियों में दुख ही दुख है तो वहां कहीं नरक चला गया कि स्वर्ग चला गया तो वो सुखांत कहाँ हो गया? नरक गया तो दुखांत, और स्वर्ग चला गया तो सुखांत, ये तुम कहां से जाए? भगवान आदिनाथ भगवान की अपन पूजा करते हैं ना, बहुत पुरानी पूजन है, तो उसकी जयमाला में आता है ना, मारी दीने तनी सुने बीने ती, आदीश्वर महाराज हो मारी दीने तनी सुने बीने ती। बोल बोलते रहे, क्या कहना है कि चारों गति के माही जो दुख पाए सो सुनो। पहली बात मैं सब कह दी कि मैंने चारों गतियों में दुख ही दुख पाए, अब वो कहानी तुम सुनो। जब पूजा में भी तुम कह रहे कि नहीं कह रहे, मैं समय सार की गाथा तो नहीं बता रहा तुम्हें, ये पूजन तो तुमने कई दफे की होगी कि नहीं की होगी। बहुत दिन पहले मैं अशोक नगर में रहता था, 40 साल से पहले की बात है ज्यादा, तो वहां पर एक सेठ जी ने मंदिर में एक बेदी बनवाई थी, उसमें भगवान आदिनाथ विराजमान के राज, एक सेठ जी ने चंदापुर भगवान की मूर्ति विराजमान की थी दूसरी वेदी में। भाग्य की बात कि हम तीनों का, हम दोनों सेठ जी का और मेरा, एक ही तारीख में ऑपरेशन हुआ। मेरा तो अपेंडिक्स का था छोटा सा, उनका बड़े बड़े ऑपरेशन हुए होंगे, और हम अस्पताल से लौट के एक शॉप घर आए तो एक सेठ जी बोले कि पंडित जी आदिनाथ की कृपा से मैं तो आ गया सुरक्षित वापस, दूसरे सेठ जी बोले कि चंदापुर ने मुझे बचा लिया। तो मैंने कहा भैया मैं कैसे बच के आ गया मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास ना आदिनाथ है ना चंदापुर है, सच्ची घटना है। तो आदिनाथ भगवान की पूजन करते थे रोजाना, और जब वो पूजा करते थे तो आंख में से आंसू की धारा बहती थी, और कैसे गदगद हो जाते थे जयमाल बोलते बोलते, और कहते थे जिस दिन मेरी ऐसी पूजन नहीं हो तो ऐसा मुझे लगता है कि आज मैं भूखा रह गया हूं कुछ। तो क्या पढ़ते थे? ऊंट बलद भैंसा भयो तपे लदियो भार अपार हो नहीं चालो तहां गिरे पड़ो पापी देशो टन की मार हो मारी दीन तनी सुन। सबको याद है क्या क्या कह रहे? ऊंट बलद भैंसा भयो, ऊंट हुआ, बैल हुआ और भैंसा हुआ, ये तीनों को बैलगाड़ी जोता जाता ना, बैल को बैलगाड़ी में, ऊंट को ऊंट गाड़ी में, भैंसा को भैंसा गाड़ी में। ऊंट बलद भैंसा भयो तापे लदियो भार अपार हो, मेरी शक्ति से ज्यादा भार नाप दिया और नहीं टाल लो तो गिर पड़ो, तो पापी देश होटन की डंडा मार मार के उठाता है, एक गिर गया, ताकत नहीं है इसकी, कुछ नहीं। क्यों? तो वो त्रिंद गति के दुख बता रहे थे, पापी देश होटन की मार हो, धमाधम 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 सारे वाद्य यंत्र नाचने वाले नाच रहे और बीच में एक आदमी बोलता, आज के आनंद की कितना मजा आया, वो काय को रह मजा आया था, आंखों से आंसू की धारा आ रही है, काय के लिए आई है? ऊंट बलद भैंसा भयो पापी बे सोटन की मार हो, ये सोटन की मार हो रही थी तो आनंद कहाँ आया? ये तो भगवान को अपनी दुख की कहानी सुना रहा है, तो पता ही नहीं मुंह से क्या निकल रहा है, तो झांझ मंजिला में ही मर गया। अरे उसमें लिखा है कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, कि छदरा में लिखा मनुष्य गति के दुख का वर्णन, देव गति के दुख का वर्णन। अरे ऐसा बोलते कि नरक गति के दुख का वर्णन, क्यों त्रिंद गति के दुख का वर्णन, और फिर मनुष्य गति के सुख का वर्णन और देव गति के सुख का वर्णन। हम तो ऐसे ही मान के बैठे गए नहीं, लेकिन इसमें तो चारों गतियों के दुखों का ही वर्णन है। लिखा है नरक में तीन लोक को नाद दुखाए, एक कण नहीं मिलता, इतना अनाज कि तीन लोग में जितना अनाज पैदा होता है वो सारा अनाज वो खा जाए तो भूख नहीं मिटे, फिर भी एक दाना नहीं मिलता है। ठीक है ना, बात लोग सत्य है क्यों अम्मा जी? ठीक है क्या? ठीक है, तीन लोग में कहाँ कहाँ अनाज पैदा होता है? देवलोक में कौन सा अनाज पैदा होता है? नरकों में कौन सा अनाज पैदा होता है? और मध्य लोग में इतने समुद्र हैं, उनमें कौन सा अनाज पैदा होता है? और जो जहां भी जमीन है उस जमीन में भी एक दिल्ली के इतने बड़े एरिया में कहां अनाज पैदा होता है? माने बहुत कम एरिया है जहां अनाज पैदा होता है, तो तीन लोग का अनाज क्यों बोल रहे? अरे भाई तुम्हें तो कल्पना करके उसका अंदाज करा रहे, ये तीन लोग का अनाज कह करके तीन लोग में अनाज पैदा होता है ये अर्थ नहीं निकालना, वे अनाज कहाँ कहाँ पैदा होता है इसका वर्णन नहीं कर रहे क्या? काय का वर्णन कर रहे हैं? उसकी भूख, उसकी आकुलता का, क्योंकि हमारी समझ में यही आता है कि हम दो रोटियां खाते हैं रोजाना और हमारी भूख शांत हो जाती है, और जिस दिन में दो रोटियां नहीं मिले तो हम तड़प जाते हैं, तो दो रोटियां नहीं मिलने का दुख कितना होता है, तो उससे अंदाजा लगाओ कि तीन लोग के अनाज का दुख कितना होगा। आप सुने ना, ये अंदाजा की बात है, ये तो आपको बताने की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप रिसर्च करने दर जाओ कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ अनाज पैदा होता है। यदि मान लो जितना अनाज पैदा होता है और उसकी उसकी आपकी जो है ना कितनी 7 साल 3.5 हाथ की शरीर है, कितना बड़ा पेट है, तुम इतना ज्यादा अनाज खा भी सकते हो क्यों? तो इतना बड़ा अनाज हो तो अनाज को इतना खा सकता है क्या? अब आपको दो रोटी की भूख है, किसी को 10 रोटी की भूख है, 10 खाता है, لیکن دونوں کو دو والے کو دو نہیں ملے اور دس والے کو دس نہیں ملے تو دونوں کا دکھ برابر ہی ہوتا ہے کہ دس روٹی والے کا کچھ زیادہ ہوتا ہے؟ بھوک مانے بھوک. لیکن ہمارے اس جگت کے جو جیو ہیں ان کو یہ سمجھنے ہی نہیں آتا, ان کو تو صرف کھانے میں سکھ اور کھانا نہیں ملنے میں دکھ اس میں ہی سمجھ میں آتا ہے, اس لیے ان کو اسی کی بھاشا میں سمجھایا. کیوں پیاس لگتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے, ایک گلاس پانی مل جائے ٹھنڈا تپتی ہو جاتی ہے, اس کے سندھو نہیں رہتے سارا سمندروں پانی پی جائے تو بھی پیاس نہ بجھے. کیوں کہاں پانی ہے, کون کو پینا ہے, کہاں لینا دینا ہے, صرف یہ بتا رہے کہ بھوک پیاس کے دکھ سے تم پرچت ہو, جن دکھوں سے تم پرچت ہو اس سے تمہیں انمان لگا رہے ہیں. ختم. ایک اندری دو سے نکلا, دو اندری آیا, تین اندری آیا, ہے نا کہ کالے انت نگو دے مجھار بیٹو ایک اندری تن دھار. ایک اندری شریر میں اتنے دنوں تک رہا وہ, اور پھر نکس بھومی جل پاوک بھیو پون پرتیک بنس پتی تھیو. کبھی سوچا اس کا ارتھ کیا ہے؟ ایک اندری میں تو نگود میں رہا اور پھر وہاں سے نکل کر کے پھر ایک اندری کنارے جی. یہ پرتھوی کیا ہے, جل کیا ہے, اگنی کیا ہے, یہ بھی تو ایک اندری ہی ہے نا. یہاں تو کہہ رہے ایک اندری میں سے نکلا اور یہاں کہہ رہے ادھر کو ایک اندری کنارے, کیا چکر ہے؟ جی تو ایک اندری تندھار لکھانا اشوک, اور پھر نکل کے کیا ہوا, بھومی پرتھوی جل اگنی وایو اور بنسپتی نہیں, پرتیک بنسپتی. کیا مطلب ہے؟ بنسپتی دو پرکار کی ہوتی ہے, سادھارن بنسپتی اور پرتیک بنسپتی. اور نوودیا سادھارن بنسپتی میں ہوتے ہیں, پرتیک بنسپتی میں نہیں ہوتے. خیال میں مہامنتری جی, تو وہ وہاں سے سادھارن بنسپتی میں سے نکلا, وہ بھی ایک اندری تھا نگوج, اور پھر ان ایک اندریوں میں آیا, اس لیے وہاں سادھارن چھوڑ دیا بنسپتی میں. پانی میں کوئی بھید نہیں کیا, اگنی میں کوئی بھید نہیں کیا, پرتھوی میں کوئی بھید نہیں کیا, نکس بھومی جل پاوک بھیو لکھا نا, ہوا میں کوئی بھید نہیں کیا. اور جب بنسپتی کی بات آئی تو دو بھید کر دیے کہ پرتیک بنسپتی ہوا میں نے سادھارن بنسپتی میں سے تو نکلا ہی ہے. اگر گھمایا کہانی شروع ہے, آگے بڑھ رہی, کبھی ترس ہوا چنتا منی جیسے رتن مل گیا ہو, ایسے ترس پر آئے پراپت ہوئی ہے نا. چنتا منی رتن کسے بولتے ہیں؟ دیکھا تو آج تک کسی نے نہیں. کیوں دیکھا ہے اشوک؟ دیکھا ہے؟ ارے دیکھا ہے کیوں گھبراتے ہو؟ شاستر میں دیکھا ہے نا, شاستر میں دیکھنا بھی تو دیکھنا ہے, شاستر میں دیکھنا بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کہ کیا ہے کہ ایک ایسا ہوتا ہے رتن کہ وہ جس کے پاس ہو تو اپن جو سوچیں سو ملے, بہت اچھی چیز ہوتی ہوگی. کیوں کہ جو سوچیں سو ملے, پھر اب اس کی بیخیا بعد میں کبھی دیکھیں گے. یعنی کداچر ایسا ہو بھی جائے, وہ آتا ہے نا ایک بار بہت تپسریا کی تو شنکر جی خوش ہو گئے, کہ انہوں نے کہا بردان دو کہ صاحب میں جو چاہوں وہ مل جائے. کیا بیٹا ہو جائے گا, جو تم جو چاہے گا تو سو ملے گا, بس لیکن اتنی بات ہے کہ جتنا تجھے ملے گا اس سے دونا تیرے پڑوسی کو ملے گا. کتنا سکھی ہو گیا ہوگا, وہ ہزار روپے مانگے تو پڑوسی کو, دو ہزار لاکھ مانگے تو پڑوسی کو دو لاکھ. اب وہی تو تکلیف تھی, پڑوسی کو دیکھ دیکھ کے تو ویلن ہوتی تھی, کھانے پینے کی کمی تھوڑی تھی, اس کے لیے تو ایسا بننا تھا. اب وہی چکر شروع ہو گیا. تو اس نے کہا کیا کروں, تو کہا میری ایک آنکھ چھوٹ جائے تو پڑوسی کی تو ہی چھوٹ گئی. تو اسے وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی दो आंखें फोड़ने के लिए अपनी भी एक आंख फोड़ने को तैयार हो जाता है। तो वहां से निकल के दो इंद्री में आया चिंतामणि रत्न के समान, तीन इंद्री हुआ, चिंटी हुआ, मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, क्यों? फिर सैनी पंचेंद्री हुआ, असैनी पंचेंद्री हुआ, ऐसी कहानी चलते चलते और पहली ढाल में तो जो उन्होंने कहानी अंत में जाके कहां खत्म करी कि यदि तू भवनवासी बनकर ये देव हो गया तो भी तुझे कोई सुख की प्राप्ति नहीं मिली, और अंत में लिख दिया जो विमान वासी हूं थाए तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि विमान वासी भी हो गया मैंने ऊपर स्वर्गों में चला गया तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी ही रहा, नौ में ग्रीवक तक गया तो भी, इसी में आएगी पंक्ति, अंतिम ग्रीवक कमलों की हद पायो अनंत बिनिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाढ़ो, है ना। नौवें ग्रीवीक तक जाए, नौवें ग्रीवीक जानते हो पहले 16 स्वर्ग होते हैं, उसके नीचे होते हैं भवनवासी बिंतर और ज्योतिषी जो मध्यलोक में और अधोलोक में रहते हैं। तो स्वर्गों में ऊपर 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रीवीक, फिर 9 अनुदिस, फिर 5 अनुत्तर, फिर उसके ऊपर सिद्धेश्वरा मोक्ष होती है, ऐसा होते हैं। तो नौवें ग्रीवी एक तक 31 सागर की आई, लेकिन सम्मा दर्शन नहीं हुआ तो भी वहां पर दुख ही दुख होगा। क्या दुख होगा वो मालूम आप जानते हैं, 31,000 वर्ष की उनकी आयु होती है इन 31 सागर की, तो 31,000 वर्ष में उन्हें भोजन का विकल्प उठता है खाने की, 31,000 वर्ष तक का तो उपवास, और ऐसा नहीं कि किसी तरह दिन पूरा कर दिया वो धोखे, बल्कि मन में भी विकल्प नहीं आए, जवान जूठी तो नहीं हो लेकिन मन में भी विकल्प नहीं आए खाने पीने का। बोलो कितना धर्मात्मा होंगे वो, और जब विकल्प आए 31,000 वर्ष बाद तो अभी गले में से अमृत झर जाए जवान जूठी तब भी नहीं हो। बोलो कैसा 31 सागर का उपवास हो गया, जवान जूठी नहीं हुई, और वो कह रहे कि वहां पर अनंत दुख पाया। तो दुख काहे का नाम है, तो इतनी इतना बढ़िया भूख नहीं लग रही है और सब तरह की मतलब पांचों इंद्रियों के विषय वहां पर कि बिल्कुल बिल्कुल त्याग है, मालूम आपको स्पर्श इंद्रिय का विषय 16 दो तीन में स्वर्ग के बाद में तो परे अपने भी चारा लिखा वहां पर 16 स्वर्ग के बाद में विकल्प होता ही नहीं है, ना मन में ना वचन में ना काया में विकल्प तक नहीं होता है, ऐसा भ्रम करिए तो भी दुखी। तो दुख काय का नाम है कि दुख तो मिथ्या दर्शन का नाम है और सुख तो सम्मा दर्शन का नाम है। इस छेड़ाला ने इतनी बड़ी बात कह दी है, ये समय सार की बात है कि नहीं? प्रचन सार में ज्ञान तत्व विज्ञापन अधिकार में एक सुखाधिकार है, तो उसमें मालूम क्या लिखा है कि दुखी कौन है? तो उन्होंने कहा चक्रवर्ती और इंद्र, ये स्वधर्म इंद्र वगैरह, चक्रवर्ती अब ये तो सम्मान इसलिए है ना, और इंद्र नागेंद्र ये दुखी, सरपति नरपति असुरपति ये दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कैसे माने हम दुखी, हमें तो ये महाराज बहुत सुखी दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि वो 24 घंटा भोगों में मस्त रहते हैं। आप जानते हैं चक्रवर्ती की पट रानी मासिक धर्म से नहीं होती है, उसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हो तो चक्रवर्ती के भोग को बाधा पड़ती है, और चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली है कि उसको निर्वाण भोगों की प्राप्ति होती है, समझे ना। तो ऐसे चक्रवर्ती को यहां कह रहे दुखी, इतना इतने सुख मौजूद, सारी विभूति मौजूद, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं, 6 खंड का मालिक, 6,000 पत्नियों का पति। तो वो कहते हैं कि यदि ये दुखी नहीं है तो इन 5 इंद्रियों के विषयों में इस तरह क्यों रमे हैं, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं, ये तो महागंदी चीज है। क्या लिखा, सुरपति असुरपति नरपति इंद्रिय विषय दबदाह से पीड़ित रहें। पांच इंद्रियों के विषयों की भोगने की इतनी आकांक्षा है, उससे इतने पीड़ित हैं, इतने गंदे पदार्थों में 24 घंटे लगे रहते, भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़कर और भरत चक्रवर्ती लड़ाई लड़ने निकल गए, ख्याल में है ना, 96,000 साधियां करने निकल गए। ये दुखी नहीं है तो ये इतने भोगों में क्यों रहते हैं, इन्हें उल्टे पकड़ी। अपन तो कहते हैं इनके लिए कितना सुख हो गया, वो कहते हैं दुख की निशानी है। देखो मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, क्यों कि मेरे पास दवाइयों के 2 बक्से और 2 डॉक्टर हमेशा साथ चलते हैं, क्यों नहीं? तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, इसकी निशानी है दवाइयों के बक्से और डॉक्टरों का चलना, कि मैं सदा बीमार हूं इसकी निशानी है। बोला तो वो कहते इतनी भोग सामग्री उनके पास है और वे उसे भोगते हैं, तो ये उनके सुखी होने की निशानी है कि दुखी होने की निशानी है? इसने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, बहुत उदाहरण दिए, मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको सुनाता हूं। पुराने जमाने में ऐसा होगा कि जब कान में भयंकर दर्द होता था ना, तो कहते हैं कि बकरे की पेशाब कान में डालो तो वो दर्द ठीक हो जाता है। मेरे कहने से कोई डालना मत, कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर से पूछना, मैं इसका डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इस समय सार में लिखा है, प्रवचन सार में लिखी है ये बात, आचार्य भगवान ने लिखी है। लेकिन आचार्य भगवान भी कोई डॉक्टर वैद्य नहीं थे, फिर जाके तुम लड़ने आ जाओ बाद में। मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए देता हूं। वो कहते हैं कि बकरे की पेशाब कान में डालो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। तो एक आदमी के कान में भयंकर दर्द था, पहले उससे कहो वैसे ही दर्द नहीं हो कि ये बकरे की पेशाब है पड़ी है इस कटोरे में, तो तुम इसे फेंक जाओ। क्या समझा तुम, मुझे भंगी समझते हो तुम, क्या समझते हो मेरे को, मैं नहीं छूंगा। उस कटोरे को छूने को तैयार नहीं है, और जब वो कान में भयंकर दर्द हुआ तो कहा कि देखो ये बकरे की पेशाब है, कान में डालेंगे दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ये समझ लो तुम कि बकरे की पेशाब है तो कान में डालेगी तो अकेले कान में नहीं रहेगी, ये गले में पहुंच जाएगी, मुंह में पहुंच जाएगी, क्योंकि अंदर सब एक ही मामला है, बाहर से अलग अलग दिखते हैं ये रास्ते, क्यों? और तुमने करीब गर्म पानी से नीचे करीब पानी तक नहीं पिया है, बोलो डालें कि नहीं डालें, कि क्यों बहस करता है, डालना जल्दी देर क्यों करता है? तो वो ये जो कह रहा है कि डाल दे जल्दी देर क्यों करता है, तो आचार्य कहते हैं ये उसके दुखी होने की निशानी है कि सुखी होने की निशानी है? और भी एक बहुत बढ़िया बात कही कि अपने ना खाना खाएं, तो अभी दिन में लोग आजकल खाते रहते हैं तो उनको खाने का मजा ही नहीं आता है, क्यों कि खाने का मजा तो भूख झटके लगी हो तब है, क्यों? रूखी सूखी रोटी में भी मजा आता है, और यदि भूख नहीं लगी हो ना तो बढ़िया से बढ़िया मान मसाला में भी अच्छा नहीं लगता है, होता क्या नहीं होता है? तो भूख का आनंद लेना है यदि भोजन का, तो भूख लगना जरूरी है। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय का समझ लो, संयोग का आनंद लेना है तो वियोग होना जरूरी है, वियोग के बिना संयोग का आनंद नहीं आएगा। अब वो जो वियोग है, खूब डट के भूख लगना, तो सुख है क्या? दुख खाओगे जब तो सुखी हो जाओगे, लेकिन जब तक नहीं खाए डट के भूख लगने तक, तो उसका प्रतिक्षण सुख हुआ क्या दुख? यदि भूख का नाम दुख है तो जब थोड़ी लगी तो थोड़ा दुख, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो लास्ट पॉइंट में 8 घंटा तो तुम दुखी हुए और 5 मिनट खाया उतने में सुखी हो गए, क्यों? अरे खाते खाने के बाद तो कोई डॉक्टर साहब है, कुछ चूरन वूरन है ना, तो सांप जैसी हालत हो जाती है जिसने किसी को रख दिया, उठ नहीं सकता, काम पे नहीं जा सकता, नहीं तो सोना पड़ेगा, क्यों? फिर दुख, तो खाते वक्त तो सुख हुआ, अरे खाते वक्त का सुख भी देखना है ना, तो हम थाली पर बैठे हैं, फिर एक कौर खाते हैं मीठे का, तो मीठे में बहुत अच्छा लगता है ना, हाँ मेरे को मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो अगला एक और फिर नमकीन का, क्यों? काय के लिए? नमकीन क्यों? मीठा खाना कि जरा मुंह ठीक हो जाए। इसका मतलब मीठा खाने से मुंह खराब हो गया तो सुख हुआ क्या दुख? अगर नमकीन से मुंह ठीक हो जाता है हाँ तो खा ले नमकीन, नमकीन नहीं मीठा फिर नमकीन फिर मीठा खा पी लिया जम के, और अब जो सौंफ सुपारी लाओ खाए के लिए तेरा मुंह ठीक हो जाए। खाते वक्त भी तेरे को कितना सुख हुआ है तू समझ ले, पसीना छूट रहा है, ये सुख के निशानी है या दुख के निशानी है? सिर में जल बोलते हैं पसीना को। तो आचार्य पंडित जी कह रहे मुझे यहां पर कहते हैं कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। इसमें मरम की बात ये है कि वो जो ये कह रहे हैं नरक में भूख के दुख, प्यास के दुख, पंचगति में बदबंधन के दुख, मारने पीटने के दुख, क्यों? मनुष्य गति में वो आता ना, बालपने में ऐसा हुआ, जवानी में ऐसा हुआ, बुढ़ापे में ऐसा हुआ, देवगति के। लेकिन वो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो इन चारों गतियों में जो इतने दुख हैं, बे भूख का दुख भोजन की कमी के वजह से नहीं है। भूख का दुख क्यों है? सम्यक दर्शन नहीं होने से है। क्या कह रहे हैं कि भूख का दुख काय से मिटेगा कि भोजन करने से कि सम्यक दर्शन से? कैसी विचित्र बात है। हम जिसका जो कारण है दुख का उसे जान नहीं रहे, जो दुख का कारण नहीं है उसे जान रहे, वो इलाज कर रहे है? वो तो ये कहते हैं कि चारों गति के जो दुख हमने गिनाए वो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, उन सब पर घटित करना, एक पर नहीं। देखो मुंजाज है जंगल में बैठे हैं, अब कोई आदमी को 8 दिन से भोजन नहीं मिला, अब भूख से तड़प रहा है, अब महाराज के पास गया, प्यास से तड़प रहा है, अब महाराज के कमंडल में पानी है, अब महाराज के पास गया कि साहब में भूख है, प्यास लगी है, ये है, ये तो अब मुझे कोई, तो उन्होंने कहा देख भाई तू जो दुखी है ना वो पानी की कमी से नहीं है, भूख की कमी से नहीं है, तू तो समग्रहण की कमी से दुखी है। तो कितना गुस्सा आएगा कि मैं तो आया था पानी मांगने, तुम्हारे पास कमंडल में है क्यों, और तुम मुझे उपदेश देते हो क्यों? अरे मुनिराज ऐसा क्यों नहीं करते अपने सिद्धिया भगत से कहते हैं जरा भैया इनको कर देना व्यवस्था, ये तो करते नहीं है, और मुझे सम्मान दर्शन का गुत्ती पिलाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बोले मुनियों को क्या करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। सर वो तो गलती करते होंगे लेकिन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उन्हें? अपनी कमंडलों का पानी उन्हें पिला देना चाहिए जो कभी मटता नहीं है, जो शुद्धि के काम आता है, क्यों तुम पी सकते हो वो पानी को क्या? तो क्यों उनको पानी पिलाने का भाव क्यों नहीं आता? किसी से ये कहने का भाव क्यों नहीं आता कि पानी पिला दो, भोजन करा दो? अब आजकल कुछ करने लग गए हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है शास्त्र के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनने दिन रात ये चिंतन करके तत्व निकाला है कि जीव मिथ्या दर्शन के कारण ही दुखी है, मिथ्या ज्ञान के कारण ही दुखी है, मिथ्या चरित्र के कारण दुखी है, और इनको मिटे बिना सम्मान ज्ञान चरित्र के बिना सुख हो ही नहीं सकता, ये पक्का उनको सिद्धांत है, इसलिए वे उसका उपदेश देते हैं। उनको तो असली चीज पता है ना क्यों क्या तकलीफ है। देखो एक पागल कुत्ता काट खाता था ना, तो पागल कुत्ता खाता है तो कहते हैं बहुत जोर की भयंकर प्यास लगती है, लेकिन उसको यदि एक घूंट पानी पिला दो तो उसे 100 गुना तकलीफ बढ़ जाती है, पानी पीते ही उसे 100 गुनी वेदना और प्यास लगती है। तो उसको जो प्यास लगी उसका इलाज पानी पिलाना है, उसके तो उस बीमारी का दूसरा इलाज है। तो असली जो डॉक्टर होगा उसे पानी वो चिल्लाएगा पानी पानी पानी, तो पानी लाके देगा कि दवाई देगा? बोलो क्या करेगा? क्योंकि वो जानता है इसके दुख का कारण ये है ही नहीं। अमोती जरा हो गया उपवाद हो रहा लंघन होती है ना, वो पानी मानियो खाना बुलाता है, वैद्य नहीं देता है, वैद्य दवाई देता है, क्यों? वो जानता है कि इसकी तकलीफ तो इससे मिटने वाली है, उससे मिटने वाली है नहीं। तो मुनिराज बेचारे क्या करें, वो ये जानते हैं कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान तत्व के कारण दुखी है और संबंध ज्ञान तत्व से सुखी हो सकता है, इसलिए वो उसका उपदेश देते हैं। और हमने वो तो मान रखा कि दुख कैसे है, रोटी नहीं मिली इसलिए दुख है, कपड़े नहीं मिले रोटी कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों की कमी की वजह से हम दुखी हैं और इन तीन चीजों का इंतजाम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। क्यों सारी दुनिया यही कहते हैं, गवर्नमेंट आगे जो नेता लोग आपको कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान बढ़िया बढ़िया कर देंगे एकदम मैं तुम्हारा सब सुखी हो जाओगे, तो भाई हो जाएंगे कि नहीं होंगे? इसका पता तो तब चलेगा जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो जाएगा। तब तो इस भव में नहीं हो पाया तो एक भव मुफत नहीं जाने दोगे, ये निर्णय नहीं करोगे कि सारी चीजें खुद के ही अनुभव से सीखोगे? तुम्हारे सामने ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनके पास इनकी कोई कमी नहीं है, क्यों देख देख तो उनसे नहीं सीख सकते हो? सब चीजें अपने से ही सीखोगे, पैसे की कमी है इसलिए भाई भाई में झगड़ा होता है, क्यों? तो जी अंबानी बंधुओं में झगड़ा हुआ था ना मुकेश और अनिल में, सही सही कमी से हुआ होगा। अब ये दो अलग अलग हो गए तो भी कहते हैं हिंदुस्तान में नंबर वन पैसे वाला मुकेश अंबानी है और नंबर तीन अनिल अंबानी। अरे दो ही जने इकट्ठे होते तो कितना होता? अब दोनों के पास इतना हो, इतना झगड़ा किस बात का? बोलो काय का झगड़ा है? सुखी हो और गांव गांव में सब्जी बेचेंगे भी, आलू भिंडी बेचेंगे भी गांव गांव में, और भिंडी के खेत लगा के पैदा करेंगे और वहां से सीधी लाएंगे और बेचेंगे, उन्हें कुंजड़ों को भी भूखों मारना है। पैसा ही कमी से होंगे उससे बहुत सुखी हो जाएंगे? कितनी हिंसा होती है इन सब कामों में, अब विचार करके देख लो ना। तो अपने शास्त्र में चक्रवर्ती वगैरह की बात आती है, लेकिन अब ये सामने देख लो ना सब कितने सुखी हैं। कैसा आप राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो बहुत सुखी है ना। जेठ सुरक्षा उनके पोते के पोते को पढ़ा ना आज अखबार में, क्यों? आतंकवादी कहते हैं कि इनके पोतों को उड़ा ले जाओ, बेटी के बेटों को उड़ा ले जाओ, कहीं भी मिल जाए स्कूल फिस्कूल में, तो फिर कहेंगे कि आतंकवादियों को छोड़ो, तो ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि जो उस कुर्सी पे बैठे हैं ये छुड़ा सकते हैं। अभी हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे को पकड़ ले रहा है तो कौन क्यों सब फिर छोड़ेगा उन आतंकवादियों को? अब उनके लिए जेड सुरक्षा दी जाए, किनको? तो दो वर्ष के बच्चे को, स्कूल में पहली क्लास में पढ़ता है उस बच्चे को जेड सुरक्षा। कितने सुखी हैं, कितने 24 घंटे कितने भयाक्रांत हैं। जो तुम्हें सुखी दिख रहे एक दफे निगाह डाल के तो देखो कि वे कितने सुखी हैं, है? अपने समाज में डाल के देखो, अगल अड़ोसी पड़ोसी पर डाल के देखो, एक दूसरे के शत्रु, पति पत्नी के शत्रु, गरीब है तो मिल बना के मजदूरी करके मिला बना के बैठे खाते लेते हैं आराम से। मैं ये नहीं कहना था तुम गरीब सुखी हैं, नहीं तो ये कहता हूं गरीब और अमीर दोनों ही दुखी हैं। तो अपेक्षा की तुलना करो तो उसकी बात है, यानी तुम जो मान के बैठे हो कि सबके पास रोटी कपड़ा और मकान हो जाएगा तो सारा देश बिल्कुल सुखी हो जाएगा, क्यों? तो अमेरिका में तो सबके पास हो गया तो वो तो बहुत सुखी हो गए, क्यों? बोलो दूसरों को देख करके भी सीख सकते हैं कि नहीं, कि हम अपने पर ही उतार उतार करके देखेंगे और सारे संयोग हम अपने पर उतार उतार के देख सकते हैं क्या? अपने के सारे प्रयोग करोगे, इनके भी देख लो कि हिंदुस्तान अमेरिका बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, है? सारी दुनिया की चिंता है? अभी अपने घर की चिंता है, उसकी सारी दुनिया की चिंता हो जाए। मैं तो छोटा सा उदाहरण देता हूं के हमको एक मच्छर ने काटा है ना, तो हमने फटाफट ऐसा मारा हाथ, उसका बेचारा मर गया। जितना खून उसने हमारा पिया था, कितना पिया होगा, पेट कितना सा है, एक बूंद का भी चौथाई हिस्सा, इतना खून पिया था बेचारे ने। और तुमसे कोई बैर विरोध नहीं था, क्या करे बेचारा भूखा था, ना तो उसकी दुकान है, ना खेती है, ना कोई धंधा है, ना कल कारखाने हैं, क्यों? क्या करता वो बोलो? पेट तो भर नहीं था, कहीं से भी मिलता है, उसने बेचारे ने अपना पेट भरा, तुमसे कोई बैर विरोध नहीं पाला, और तुम्हारा इतना सा खून लिया और तुमने अपना खून तो पूरा ले लिया, उसका जीवन भी ले लिया बदले में, बोलो ये न्याय है? अरे तुम इतनी सी बात करते हो, आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं, डीडीटी को बोलो, सारे घर में डीडीटी छिड़काओ, एक भी मच्छर नहीं रहना चाहिए। एक मच्छर ने तुम्हें क्या काटा, तुम मच्छर के कुल के कुल साफ करने तैयार, अंडों का भी गोभी ने खत्म हो जाए, भविष्य में मच्छर की नस्ल ही खत्म हो जाए, क्यों? और जो तुम घर में डीडीटी छिड़कोगे, अकेले मच्छर मरेंगे, कॉकरोच नहीं मरेंगे, जिन कीटों से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता, वे कीटाणु मरेंगे कि नहीं मरेंगे? लेकिन नहीं, हमको एक मच्छर ने क्यों काटा? और यदि दुर्भाग्य से म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हो गए तो पूरे गांव में छिड़का दो, क्यों? और दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए तो पूरी दिल्ली में कहीं भी एक मच्छर दिखाई नहीं देना चाहिए, और महादुर्भाग्य से प्रधानमंत्री हो गए तो सारे देश में एक मच्छर जिंदा नहीं रहना चाहिए, अखबारों में निकाल दो, दीवारों पर लिख दो कि एक मच्छर लाके जो बताएगा मलेरिया का मरीज उसे 1,000 रुपये इनाम, क्यों? एक मच्छर को मारते हैं दूसरा मच्छर पैदा हो जाता है, डेंगू जाता है तो चिकनगुनिया आ जाता है, मलेरिया जाता है, क्यों? क्या होता है बोलिए? लेकिन हम कितने बड़े हत्यारे हैं कि एक मच्छर ने हमें काटा, क्यों? तो हमने सारी दुनिया के मच्छरों को निकाल दिया, तो हम क्या करते, हम काटने देते? आई को काटने देते, हम क्यों क्या काटने देते, मच्छरदानी लगा लेते, क्यों? अरे भाई अपने पैर में तुम्हारी गड़बड़ होती है, कीचड़ लगता है, तुम जूता पहन लो ना, सारी दुनिया को चमड़े से क्यों मरते हो? सारी दुनिया को चमड़े से मर दो, क्यों? अपने पैर में जूता पहन लो ना, तो अपनी सुरक्षा करो, करना है तो उसका नाम सुरक्षा है, ये उनको मार डालो उसका नाम सुरक्षा है, ये जीव सुखी है, इन्हें कभी सुख मिलेगा? बोलो, राजेश्वरी से नरकेश्वरी ऐसा लिखा है, राजा यदि गृहस्थी में मरे राजपथ में तो गारंटी से नरक जाता, चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती यदि गृहस्थी में मरे तो गारंटी से नरक जाते हैं, आप जानते हैं? और फिर वो जाते हैं तो छोटे मोटे नरक नहीं जाते, सीधे सात में कि भरत तो मोक्ष गए चक्रवर्ती, अरे भरत चक्रवर्ती थोड़ी मोक्ष गए, बोले दीक्षा ले ली और भरत मुनि बन गए, तो भरत मुनि मोक्ष गए हैं, भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए, भरत चक्रवर्ती क्या मोक्ष गए, मुनि मोक्ष गए ना, यदि वो चक्रवर्ती तो हमारे स्वभाव चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो नरक गए कि नहीं गए? तो जो चीज अनंत दुख का कारण है उसे हमने सुख स्वरूप मान लिया है, सुख का कारण मान लिया है। गुजरात की तो हालत ऐसी है, हम जाते हैं कभी वहां तो हम लोग यहाँ कितने घर ज्ञानियों के होंगे, तो कहते हैं 100 घर होंगे, फिर बिना ही पूछे बताते हैं कि 10 घर सुखी है, लेकिन हमने कब पूछा था कि कितने सुखी है कितने दुखी है, क्यों? आप समझिए 10 घर सुखी का मतलब क्या है? अरे हम तो जानते हैं कि सारे संसार में कोई सुखी नहीं है, जो संसार से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर साधन करते संयम सो अनुरागे। बोलो सुख है संसार, उनके पास क्या कमी थी? भरत चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी? उन्हें सुख महसूस नहीं हुआ तब तो एक क्षण में पूरा छोड़ के और नंदकमर होकर चले गए ना, और हम कहते हमें मिल जाएगा, हम तब देखेंगे अनुभव करके। भाई बहुत बातें दूसरों के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए, पहली ढाल का एकमात्र इतना ही कथन है कि संसार में सुख नहीं है, ये बात आपकी समझ में आ गई तो समझ लेना पहली ढाल समझ में आ गई।